بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سمانیہ شروتا زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ آج کا کاریکرم پوتر قرآن کے سورہ نساء کی 17ویں اور 18ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کیا جا رہا ہے۔ قرآت کا شرح پراپت کر رہے ہیں شری محمد زادہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما التوبة على اللہ للذین يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قریب فأولئک یتوب اللہ علیہم وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ کیول ان لوگوں کی توبہ سویکار کرنا ایشور کے ذمہ ہے جو اگیانتا کے کارن برائی کر بیٹھتے ہیں، پھر شیگری توبہ کر لیتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جن کی توبہ ایشور سویکار کر لیتا ہے، اور ایشور گیانی بھی ہے اور تتودرشی بھی۔ اور توبہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کرم کرتے رہے اور پھر جب موت سامنے آ گئی تو انہوں نے کہا کہ اب ہم نے توبہ کر لی، اور نہ توبہ ان کے لیے ہے جو مرتے سمے تک کافر رہے، ان کے لیے ہم نے کڑا دنڈ تیار کر رکھا ہے۔
दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा। हमारे प्रसारण को आप शॉर्ट वेव में 25 मीटर बैंड बराबर 11,860 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। दोस्तों हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir और हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.ir/hi। दोस्तों आज रविवार है, तीरमा की 18, जिलिज्जा की 20 और जुलाई की 9 तारीख। हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आप विश्व समाचार सुनेंगे, उसके उपरांत राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। राजनीतिक चर्चा के उपरांत हम आपको हजरत इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के शुभ जन्म दिवस पर विशेष कार्यक्रम सुनवाएंगे और सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा जो कि आत्मा को शांति प्रदान करने वाला कार्यक्रम है, कुरान ईश्वरीय चमत्कार। तो दोस्तों ये तो थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा और अभी आप कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनेंगे। अब आप रेडियो तेहरान से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का कहना है कि अगर मुस्लिम राष्ट्र एकजुट हो जाएं तो मुसलमानों पर कोई अत्याचार नहीं कर सकेगा। सीरिया ने झूठी खबरें फैलाने के आरोप में बीबीसी को देश से बाहर निकाल दिया। फिलिस्तीनियों और इसराइल के बीच झड़पों में तेजी आ गई है। मणिपुर के पूर्व राज्यपाल ने मणिपुर की स्थिति को पंजाब और जम्मू कश्मीर से भी बदतर करार दिया है। और अब आप मरियम मेरदादी और अख्तर अब्बास से विस्तार से समाचार सुनिए।
इस्लामी गणतंत्र ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में साझा दृष्टिकोण के आधार पर अल्जीरिया के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंधों के विस्तार पर बल दिया है। शनिवार को तेहरान में अल्जीरियाई विदेश मंत्री के साथ मुलाकात में राष्ट्रपति रईसी ने कहा कि दो दोस्त और मुस्लिम राष्ट्रों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों के विस्तार के लिए संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने अल्जीरिया के क्रांतिकारी इतिहास की प्रशंसा करते हुए कहा कि ईरान और अल्जीरिया की जनता के बीच धार्मिक और दोस्ताना रिश्ता है। उन्होंने कहा कि ये घनिष्ठ संबंध व्यापार और अर्थव्यवस्था सहित विभिन्न क्षेत्रों तक फैल सकता है। ईरान की उल्लेखनीय वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों की ओर इशारा करते हुए राष्ट्रपति रईसी ने इन उपलब्धियों को अल्जीरिया के साथ साझा करने के लिए तेहरान की तत्परता का ऐलान किया। फिलिस्तीनी मुद्दे के समर्थन पर ईरान और अल्जीरिया के साझा रुख का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम राष्ट्र एकजुट हो जाएं तो क्षेत्र और दुनिया में मुसलमानों पर कोई अत्याचार नहीं कर सकेगा।
इस्लामी गणतंत्र ईरान ने जाहिदाना आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने जाहिदाना आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि ईरान की सुरक्षा के दुश्मनों ने एक बार फिर देश की सुरक्षा बलों और राष्ट्र के सेवकों को निशाना बनाया। उनका कहना था कि इस आतंकी और कायरतापूर्ण हमले में शहीद होने वालों के परिजनों की सेवा में सांत्वना पेश करते हैं और ईश्वर से उनके उच्च स्थान की दुआ करते हैं। ज्ञात रहे कि शनिवार 8 जुलाई को 4 आतंकी आम लोगों के कपड़ों में जाहिदान के 16 नंबर थाने पर हमला किया, जिसके बाद झड़पों में चारों आतंकी मारे गए जबकि क्रॉस फायरिंग में 2 सुरक्षाकर्मी भी शहीद हुए। सूत्रों का कहना है कि आतंकी थाने में मौजूद हथियार और गोला बारूद को लूटने आए थे, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए।
ईरान की मानवाधिकार संस्था के प्रमुख ने ज़ाहिदान के आतंकी हमले पर मानवाधिकारों के दावेदारों की डरामाई चुप्पी की कड़े शब्दों में निंदा की है। ईरान के मानवाधिकारों के सेक्रेटरी काजिम गरीब आबादी ने ज़ाहिदान के आतंकी हमले और दो पुलिसकर्मियों की शहादत पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि जब आतंकी हथियारों और अपराधियों का समर्थन बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने ईरानी पुलिस के दो कर्मियों को शहीद किया। मानवाधिकार के तथाकथित दावेदार कहाँ हैं? उन्होंने डरामाई चुप्पी अपना रखी है? अब उनके चेहरे से दोगली नीतियों का नकाब उतरना चाहिए और इन मजलूम शहीदों को इंसाफ मिलना चाहिए। ज़ाहिदान की मक्का मस्जिद के इमाम मौलवी अब्दुल हमीद ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए सिस्तान और बलोचिस्तान की जनता से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि हालात को खराब करने वाली हर कार्रवाई से बचा जाए।
सीरिया के सूचना मंत्रालय का कहना है कि उसने फेक न्यूज और सूचनाओं के राजनीतिकरण के कारण बीबीसी के लिए काम करने वाले दो स्थानीय पत्रकारों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। मंत्रालय का आरोप है कि बीबीसी पेशेवर मानकों का पालन करने में नाकाम रहा है। सीरियाई सूचना मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान में कहा कि पक्षपातपूर्ण और भ्रामक रिपोर्टें प्रसारित करने के कारण एक पत्रकार और कैमरामैन की मान्यता रद्द कर दी गई है। मंत्रालय का कहना है कि सीरिया में बीबीसी के एक रेडियो संवाददाता की मान्यता भी रद्द कर दी गई है। सूचना मंत्रालय का कहना है कि 2011 में देश में संकट की शुरुआत के बाद से बीबीसी ने फेक न्यूज और भ्रामक रिपोर्ट प्रसारित की हैं। हालांकि बीबीसी से निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता करने का दावा किया है। बीबीसी का यह भी दावा है कि पिछले महीने कैप्टागोन ड्रग के कारोबार और सीरियाई सैन्य बलों के वरिष्ठ सदस्यों और असद परिवार के सदस्यों के बीच संबंध पर आधारित उसकी एक रिपोर्ट के प्रसारण के बाद सीरियाई सरकार ने उसके खिलाफ ये कार्रवाई की है। हालांकि सीरियाई सूचना मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि बीबीसी को एक से ज्यादा बार चेतावनी दी जा चुकी है, लेकिन आतंकवादी गुटों और सीरियाई के खिलाफ दुश्मनी रखने वालों के बयानों के आधार पर उसने अपनी भ्रामक रिपोर्टें प्रसारित करना जारी रखा।
ये समाचार रेडियो तेहरान से प्रसारित किए जा रहे हैं। अंकारा में सीरिया के पूर्व राजदूत निजाल कबलान का कहना है कि हमारे राष्ट्रपति बशार असद अपने तुर्क समकक्ष से उस वक्त मुलाकात करेंगे जब ये देश हमारी सीमाओं से अपने सैनिकों को बाहर निकाल लेगा। अर्दोगान ने सीरिया संकट में असद सरकार विरोधी चरमपंथी गुटों का साथ दिया था, लेकिन इन गुटों की पराजय के साथ ही उसने अपना रुख काफी हद तक बदल लिया है। हाल ही में तुर्क राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने अपने सीरियाई समकक्ष बशार अल असद से मुलाकात की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन दमिश्क का कहना है कि जब तक गैर कानूनी रूप से तुर्क सैनिक सीरियाई सीमाओं में हैं, दोनों देशों के बीच मुलाकात का कोई मतलब ही नहीं है। तुर्की ने आतंकवाद से मुकाबले के बहाने लगभग 3 साल पहले सीरिया के उत्तर और उत्तरी पूर्वी इलाकों में अपने सैनिकों को तैनात कर दिया था और इन इलाकों पर कब्जा कर लिया था।
रूस ने कई यूक्रेनी कमांडरों की तुर्की से स्वदेश वापसी की कड़ी निंदा की है, जिन्हें मॉस्को और कीव के बीच एक समझौते के तहत युद्ध के अंत तक वहीं रहना था। यूक्रेन के अतिराष्ट्रवादी अजोव बटालियन से संबंध रखने वाले 5 कमांडरों को पिछले सितंबर में कैदियों के आदान प्रदान के एक समझौते के तहत आज़ाद किया गया और तुर्की ले जाया गया था। इस समझौते का लाभ 10 विदेशियों सहित लगभग 300 लोगों को हासिल हुआ था, लेकिन तुर्की का दौरा करने वाले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की शनिवार को इन 5 कमांडरों को स्वदेश वापस लेकर चले गए। समझौते का उल्लंघन करने वाले यूक्रेन के इस कदम से रूस भड़क गया है। रूस का कहना है कि इसके बारे में उसे सूचित नहीं किया गया। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का कहना है कि तुर्की से अजो कमांडरों की यूक्रेन वापसी समझौते की शर्तों का खुला उल्लंघन है।
ज़ायनी आतंकवादियों और फिलिस्तीनी युवाओं के बीच होने वाली ताज़ा झड़पों में 4 अन्य फिलिस्तीनी घायल हो गए। रिपोर्ट के अनुसार वेस्ट बैतलहम में स्थित हुसान बस्ती और पश्चिमी रामल्ला की नालैन बस्ती में ज़ायनी आतंकवादियों और फिलिस्तीनी युवाओं के बीच झड़पें हुई। इसके अलावा नाबलस और अरिहा क्षेत्र की अल औजा बस्ती में ज़ायनियों और फिलिस्तीनी युवाओं के बीच झड़पें हुई। ज़ायनी आतंकियों ने फिलिस्तीनियों पर फायरिंग की और साउंड बम फेंके। उधर जेनिन के पश्चिमी क्षेत्र शेख मरज से सूचना है कि फिलिस्तीनी प्रतिरोध करदा संगठनों के जवानों ने ज़ैनी आतंकियों को अपने निशाने पर लिया और उन पर फायरिंग की। इस प्रतिरोध की कार्रवाई में होने वाले संभावित नुकसान की सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है।
यमन की नेशनल सल्वेशन सरकार ने स्वीडन में हुए पवित्र कुरान के अनादर पर स्वीडिश उत्पादों के देश में दाखिल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। यमनी सूत्रों के अनुसार यमन के नेशनल सल्वेशन सरकार के व्यापार और उद्योग मंत्री मोहम्मद मुत्तहार ने बताया है कि यमन की मंत्रियों की काउंसिल में स्वीडिश उत्पादों के देश में दाखिले पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया गया है, जिसके बाद एक कमेटी भी बना दी गई है जो व्यापारियों और उनके प्रतिनिधियों के साथ संपर्क में रहते हुए उन्हें इस फैसले के क्रियान्वयन के लिए कहेगी। यमन के व्यापार मंत्री का कहना था कि स्वीडिश उत्पादों के देश में आयात कम अवश्य हैं, लेकिन उन पर प्रतिबंध इसलिए लगाई गई है कि पवित्र कुरान के अनादर के संबंध में उनके देश का आलोचनात्मक संदेश दुनिया तक पहुंच जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि बंदरगाहों पर अगर स्वीडिश उत्पाद पहुंचे तो उन्हें फ्रीज कर दिया जाएगा।
मणिपुर के पूर्व राज्यपाल गुरबचन जगत ने द ट्रिब्यून में प्रकाशित एक लेख में मणिपुर में उथल पुथल के बारे में बात करते हुए कहा कि उत्तर पूर्व के इस राज्य की स्थिति पंजाब और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में देखे गए संघर्ष के चरम से भी बदतर है। एक आईपीएस अधिकारी के रूप में जम्मू कश्मीर और पंजाब में काम कर चुके जगत ने लिखा कि सभी तर्कों को खारिज करने वाला तथ्य यह है कि राज्य भर में पुलिस थानों और पुलिस शस्त्रागारों पर हमला किया गया और हजारों बंदूकें व भारी मात्रा में गोला बारूद लूट लिया गया। जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, गुजरात के सबसे बुरे समय में ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि चोरी हुए हथियार राज्य के सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बने रहेंगे। उन्होंने लिखा कि मणिपुर में शांत और धीमी गति से चलते जीवन के बावजूद आदिवासी आबादी के प्रति शत्रुता की भावना हमेशा दिखाई देती थी। जगत ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया गया और बड़े पैमाने पर उनका पालन किया गया, लेकिन क्रॉस माइग्रेशन अंततः एक गलती के तौर पर उभरा जिसका परिणाम हालिया हिंसा है। उन्होंने राज्य के लोगों के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की, जहां 140 से अधिक लोग मारे गए, कई घायल हुए, हजारों घर और गांव जल गए और नतीजतन लोगों की आजीविका का नुकसान हुआ।
मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक आदिवासी व्यक्ति पर एक अन्य व्यक्ति द्वारा पेशाब करने का वीडियो सामने आने के बाद एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वीडियो में युवकों के एक समूह को दो आदिवासी लड़कों पर बेरहमी से हमला करते और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए देखा जा सकता है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना इंदौर के राव इलाके में पिछले शुक्रवार 7 जुलाई को हुई। पुलिस ने बताया कि भारी बारिश के कारण दो आदिवासी भाइयों की बाइक फिसल गई थी, जिससे पास के एक टाउनशिप के कुछ सुरक्षा गार्डों के साथ उनकी बहस हो गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि इसके बाद सुरक्षाकर्मी दोनों को गार्ड रूम में ले गए और उनके साथ बेरहमी के साथ मारपीट की।
विभिन्न देशों के विश्वविद्यालयों के 500 से अधिक शिक्षाविदों ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क देशों के विदेश मंत्रियों को पत्र लिखकर नई दिल्ली स्थित साउथ एशियन यूनिवर्सिटी SAU के 4 फैकल्टी सदस्यों के निलंबन के संबंध में हस्तक्षेप की अपील की है।
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से भारत के कई राज्यों में इस समय भारी बारिश का दौर जारी है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से बारिश के कारण लगातार लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं। पूरे उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश और भूस्खलन के कारण शनिवार को लगभग 100 सड़कें, राजमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गए। राज्य में बारिश के कारण जलभराव और यातायात जाम हो गया। पहाड़ी इलाकों में सड़कें अवरुद्ध हो गईं और कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं। क्षेत्रीय मौसम केंद्र उत्तराखंड के अनुसार वर्तमान बारिश का दौर 5 दिन पहले शुरू हुआ था और 13 जुलाई तक जारी रहने की संभावना है। 11 और 12 जुलाई को भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से समाचार समाप्त हुए।
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
دوستو، میں ہوں روش زیدی اور آپ کا سواگت ہے راجنیتک چرچا کے دینک کارکرم میں۔ آج کے کارکرم میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے یوکرین روس یدھ کے بارے میں۔
روس یوکرین یدھ جاری ہے اور ابھی یہ اسپشٹ نہیں ہے کہ یہ یدھ۔
اور پھر بات کریں گے مانوادھیکار معاملوں کو لے کر بھارت اور امریکہ کے بیچ بڑھتی دوریوں کے بارے میں،
بھارتیہ پردھان منتری نریندر مودی کی امریکہ۔
اور انت میں چلیں گے بھارت، جہاں کشمیر میں ایک بار پھر محبوبہ مفتی نے بھارت کی کیندر سرکار کی نیتیوں کو لے کر کئی سوال اٹھائے ہیں۔
پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ادھیکشا اور جموں کشمیر کی۔
تو دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں لمبا کھینچتے روس یوکرین یدھ کی۔ روس نے جب یوکرین کے خلاف اپنا وشیش سینیہ ابھیان آرمبھ کیا تھا تو یہ مانا جا رہا تھا کہ یہ یدھ کچھ ہی دن میں سماپت ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب پوری دنیا یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ آخر یہ یدھ کب سماپت ہوگا۔ اس سمبندھ میں ایک رپورٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی محمد مہندی۔
روس یوکرین یدھ جاری ہے اور ابھی یہ اسپشٹ نہیں ہے کہ یہ یدھ کب تک چلے گا۔ فروری 2022 میں جب یہ یدھ آرمبھ ہوا تھا تو پرتیتی ہو رہا تھا کہ کچھ ہی دنوں میں یہ یدھ سماپت ہو جائے گا، پرنتو اس یدھ کو آرمبھ ہوئے ایک سال سے ادھک کا سمے بیت رہا ہے اور ابھی تک یہ اسپشٹ نہیں ہے کہ یہ یدھ کب تک چلے گا۔ روس کے راشٹرپتی ولادیمیر پوتین نے گروار 24 فروری 2022 کو اپنے ٹی وی سمبودھن میں اعلان کیا تھا کہ دیش کی سینائیں ڈونباس چھیتر میں وشیش سینیہ آپریشن انجام دیں گی۔ اس کے بعد روسی راشٹرپتی نے یوکرینی سینکوں کا آہوان کیا کہ وہ آتم سمرپن کر دیں، پرنتو یوکرین کے سینکوں نے ان کے آہوان پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ اس یدھ کی سب سے بڑی اور مکھیہ وجہ یہ تھی کہ یوکرین ناٹو کا سدسیہ بننا چاہتا ہے اور اس کی اس اچھا کو روس اپنی راشٹریہ سرکشا کے لیے گمبھیر خطرہ مانتا ہے۔ روس نے یوکرین سے کئی بار آہوان کیا کہ وہ اس مانگ کو چھوڑ دے، پرنتو وہ اپنی مانگ سے پیچھے نہیں ہٹا اور ناٹو کا سدسیہ بننے کی مانگ آج بھی کر رہا ہے، پرنتو آج تک اسے ناٹو کی سدسیہ نہیں دی گئی۔ یوکرین یہ سمجھتا ہے کہ ناٹو کا سدسیہ دیش بن جانے سے اس کی سرکشا سنشچت ہو جائے گی، پرنتو روس نے جب یہ دیکھا کہ یوکرین ابھی ناٹو کا سدسیہ نہیں بنا ہے اور امریکی ڈرون اس کی سیما کے نکٹ اڑ رہے ہیں اور جاسوسی کاروائیاں کر رہے ہیں، تو اس نے اس چیز کو اپنی راشٹریہ سرکشا کے لیے گمبھیر خطرہ سمجھا اور وشیش سینیہ کاروائی آرمبھ کر دی۔ 24 فروری 2022 سے اب تک دونوں پکچوں کے ہزاروں سینک اور غیر سینک اس یدھ میں مارے جا چکے ہیں۔ دوسرے شبدوں میں جان مال کی بھاری تباہی دونوں پکچوں کی ہو چکی ہے، پرنتو یورپی اور پشچمی دیشوں وشیش کر امریکی سمرتھن کے کارن یہ یدھ جاری ہے اور نکٹ بھوش میں اس یدھ کے سماپت ہونے کی کوئی اپیکچھا نہیں کی جا سکتی۔ جانکار حلقوں کا ماننا ہے کہ اس یدھ کی آگ جن دیشوں وشیش کر امریکہ نے لگائی ہے، جب تک ان کے درشکوں میں بدلاؤ نہیں آئے گا تب تک اس یدھ کے سماپت ہونے کی کوئی اپیکچھا نہیں کی جا سکتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پشچمی و یورپی دیشوں وشیش کر امریکہ نے اس یدھ کی آگ کیوں لگائی اور اس سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے جواب میں جانکار حلقوں کا کہنا ہے کہ امریکہ اور روس میں ورشوں سے دشمنی چلی آ رہی ہے اور یہ وہ چیز ہے جو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ امریکہ پوری دنیا پر ایک چھتر راج چاہتا ہے اور اس دشا میں وہ روس کو سب سے بڑی رکاوٹ کے روپ میں دیکھتا ہے، اور جب تک روس
शक्तिशाली देश के रूप में मौजूद रहेगा तब तक अमेरिका की हार्दिक इच्छा पूरी नहीं हो सकती, इसलिए रूस को कमजोर करना उसके अनुसार बहुत जरूरी था। चूंकि रूस से सीधा टकराने के लिए अमेरिका के अंदर साहस नहीं था, इसलिए उसने यूक्रेन को बलि का बकरा बना दिया और युद्ध की आग लगाकर यूक्रेन के लिए हथियारों की सप्लाई करने लगा और इस संबंध में वो न जाने कितने अरब का हथियार यूक्रेन को दे चुका है। दूसरे शब्दों में जब तक पश्चिमी व यूरोपीय देश विशेषकर अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध में हथियारों की सप्लाई करके आग में घी डालने का काम करते रहेंगे तब तक इस युद्ध के समाप्त होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती और ये पश्चिमी व यूरोपीय देशों और अमेरिकी नीतियों का परिणाम है जिसके नतीजे में यूक्रेन एक खंडर व कमजोर देश बनता जा रहा है।
और अब चर्चा करते हैं अमेरिका और भारत के रिश्तों के बीच मानवाधिकार उल्लंघनों की खड़ी होती दीवार के बारे में। अमेरिका जो चीन से मुकाबले के लिए किसी भी स्थिति में भारत को अनदेखा नहीं करना चाहता है, वहीं उसके सामने एक समस्या ये खड़ी हुई है कि आखिर भारत में मानवाधिकारों के होते उल्लंघनों के मामलों को किस तरह नजरअंदाज करे। वहीं अमेरिकी मानवाधिकार विभाग की एक टीम भारत का जल्द दौरा करने वाली है, इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी सैयद मीसम।
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की राजकीय यात्रा से पहले ये सवाल बार बार उठ रहा था कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन मोदी से भारत में अभिव्यक्ति की आजादी, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, लोकतंत्र में गिरावट और मानवाधिकारों से जुड़े मुद्दों पर अमेरिकी चिंताओं का जिक्र करेंगे। अमेरिका जो चीन से मुकाबले के लिए भारत को अपने लिए सबसे जरूरी साथी समझता है, उसके साथ करीब हर क्षेत्र में संबंधों का विस्तार चाहता है, लेकिन उसके लिए उसे भारत से कुछ अपेक्षाएं हैं। अगर भारत उसकी इन उम्मीदों को पूरा करता है तो वाशिंगटन लोकतंत्र, मानवाधिकार और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा जैसे मुद्दों से आसानी से समझौता कर सकता है, जैसा कि उसका इतिहास भी गवाह है। यही वजह है कि दुनिया भर को इन मुद्दों पर लेक्चर देने वाला अमेरिका मोदी के इस दौरे पर सीधे रूप से इन मुद्दों को उठाने से कतराता रहा। हालांकि अमेरिकी अधिकारी ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर वो इन मुद्दों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हैं तो उन्हें अपनी जनता को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। शायद यही वजह है कि वो मोदी को दिखावे के तौर पर ही सही मानवाधिकारों का सम्मान करने के लिए राजी करना चाहता है। यही वजह है कि मोदी की अमेरिका की यात्रा के बाद अमेरिकी मानवाधिकार विभाग की आला अफसर भारत दौरा करने वाली हैं। नागरिक सुरक्षा, लोकतंत्र, मानवाधिकार और तिब्बत मामलों पर विशेष अमेरिकी कोऑर्डिनेटर उजरा जिया भारत की अपनी यात्रा के दौरान सरकार और नागरिक संगठनों के शीर्ष अधिकारियों से बात करेंगी और दलाई लामा से भी मुलाकात करेंगी। जून में मोदी और बाइडेन की मुलाकात के बाद किसी अमरीकी उच्च अधिकारी के नेतृत्व में किसी शिष्टमंडल का ये पहला भारत दौरा होगा। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका मानवाधिकारों को लेकर जितना दिखावा करता है, मोदी सरकार उससे किसी भी तरह से पीछे नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के मामले में मोदी सरकार का रिकॉर्ड तो किसी से छिपा नहीं है, चाहे वो 2002 के गुजरात दंगों के दौरान मुसलमानों का नरसंहार हो या 2014 के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद मुसलमानों की लिंचिंग और हत्याएं हों। लेकिन जब वो किसी विदेश दौरे पर जाते हैं तो सिर्फ महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध और अहिंसा की बात करते हैं। यहाँ तक कि वो भारतीय इतिहास के सबसे बड़े सच, जात के आधार पर भेदभाव से भी इनकार करते नजर आते हैं, जैसा कि उन्होंने अमेरिका की अपनी हालिया यात्रा के दौरान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में धर्म, जाति, उम्र या भूभाग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी सरकार लोकतंत्र के मूल्यों के आधार पर बने संविधान के आधार पर चलती है तो पक्षपात का कोई सवाल ही नहीं उठता।
और अब रुख करते हैं भारत का। भारत प्रशासित कश्मीर की भूतपूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भारत सरकार पर आरोप लगाया है कि वो कश्मीर की वास्तविक स्थिति को बदलने की साजिश रच रही है। वहीं कश्मीर में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। पूरे राज्य को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं श्रीनगर से हमारे संवाददाता सिप्ते मोहम्मद हसन।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की भूतपूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर नई दिल्ली पर आरोप लगाया है कि वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में राजनीति करना जानता है, परंतु लोगों को कोई राहत नहीं दे पा रहा है और पिछले 4 वर्षों से वो लगातार ऐसे कानून ला रहा है जिससे यहाँ के लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी पाई जा रही है। श्रीनगर में पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बेघर लोगों को निवास देने की नई योजना सामने आई है और जो आंकड़े हमारे सामने हैं वो 19,000 या 20,000 के निकट ऐसे लोग हैं जिनके पास जम्मू कश्मीर में अपने निवास नहीं है, परंतु जम्मू कश्मीर के यूटी प्रशासन ने ये योजना लाई है और उसमें ये कहा है कि 1,99,000 लोगों को घर दिए जा रहे हैं और उसके लिए उन्होंने 5 मरले जमीन रखी है। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को बिल्कुल तब्दील करने का प्रयास हो रहा है जिसे हम संभव होने नहीं देंगे। उन्होंने नई दिल्ली की मौजूदा रजीम पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को दबाना चाहती है। उन्होंने इस अवसर पर पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा,
यहाँ जो हमारी सरकार है उनसे कहना चाहती हूँ कि आपने जम्मू कश्मीर में जो एक दबाव का माहौल बना के रखा है, पहले इसको जेल बना के रखा है आपने जम्मू कश्मीर को, अब इसको स्लम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्या हो गया आप लोगों को? किस कश्मीर को? वो कश्मीर, वो जम्मू कश्मीर के लोग, हम तो रिफ्यूजी बन के, हमने आपके साथ हाथ नहीं मिलाया था, हम रिफ्यूजी इस मुल्क में रिफ्यूजी बन के नहीं आए थे, बल्कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जमीन लेके हम आपके साथ हमने हाथ मिला, आज आप हमारी उसी जमीन के पीछे पड़े हैं।
इस बीच श्रीनगर में लगातार बारिशों के फलस्वरूप यहां के नदी नालों में सैलाबी स्थिति पैदा हुई है और प्रशासन ने भी रेड अलर्ट जारी कर दिया है। दरियाओं के किनारे पर जो लोग जिंदगी बसर कर रहे हैं उनसे ये कहा गया है कि वो सावधान रहें और फ्लड कंट्रोल बोर्ड को भी ये आदेश दिए गए हैं कि वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भरपूर प्रयास करें। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कहा है कि वो किसी भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को तयार रहने के भी आदेश दिए हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर में जारी सालाना अमरनाथ यात्रा भी सस्पेंड कर दी गई है क्योंकि बालथल और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में लगातार बारिशें हो रही है। पिछले 3 दिवस से ये यात्रा हॉल्ट पे है। प्रशासन ने कहा है कि जो ही स्थिति में बेहतरी आएगी तो यात्रा दोबारा बहाल होगी। सिप्ते मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
दोस्तों, राजनीतिक चर्चा का ये दैनिक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
दोस्तों, इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर विशेष कार्यक्रम के साथ आप सबकी सेवा में हाजिर हैं। मरियम मेहदादी और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। इस शुभ अवसर पर आप सबकी सेवा में हार्दिक बधाई प्रस्तुत करते हैं।
हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। आपका जन्म 20 जिलहिज्जा 128 हिजरी कमरी में मक्का और मदीना के बीच अबवा नामक स्थान पर एक घर में हुआ था। हज़रत हमीदा आपकी माँ थीं। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए थे तो उनके पिता हज़रत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, ईश्वर ने मुझे बेहतरीन इंसान प्रदान किए हैं। जब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम को इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के जन्म की शुभ सूचना दी गई तो इमाम नवजात शिशु के स्वागत के लिए बड़ी तेज़ी से उसके पास पहुँचे। इमाम इस नवजात शिशु के जन्म से बहुत प्रसन्न थे। हालांकि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के पास 2 और बेटे थे, परंतु उनके निकट इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का विशेष स्थान था। उसकी वजह यह थी कि इमाम भलीभांति जानते थे कि ये समय का इमाम है।
इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम जब बहुत छोटे थे तभी से अपने पिता की ज्ञान की सभाओं और क्लासों में भाग लेते थे और अपनी आत्मा की प्यास को इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के ज्ञान के अथाह सागर से तृप्त करते थे। खुद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के ज्ञान के बारे में फरमाते हैं, मेरा बेटा मूसा इतना ज्ञान रखता है कि अगर समूचे कुरान से उससे सवाल किया जाए तो वो सबका संतोषजनक उत्तर देगा।
इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम सत्य का प्रकाश थे। उनका पावन अस्तित्व लोगों विशेषकर सत्य प्रेमियों के लिए मार्गदर्शन का चिराग था। पवित्र कुरान पर अमल करना समस्त अच्छे इंसानों विशेषकर इमामों की जीवन शैली रही है। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम ने भी पवित्र कुरान पर अमल करके अपने अनुयायियों और इंसानों को सिखा दिया कि पवित्र कुरान में चिंतन मनन करके अपने जीवन को अर्थपूर्ण बना सकता है, क्योंकि ये ईश्वरीय किताब मानव जीवन के नियमों को बयान करती है।
इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम अपनी इमामत के 35 वर्षों में पवित्र कुरान की शिक्षाओं को जीवित करने में मूल्यवान भूमिका निभाई है। इमाम ईश्वरीय दूत के रूप में पवित्र कुरान पर विशेष ध्यान देते थे और वो न केवल लोगों को इसे पढ़ने और इसकी आयतों व शिक्षाओं पर अमल करने का निमंत्रण देते थे बल्कि इस कार्य में स्वयं सबसे आगे थे। वरिष्ठ शिया धर्मगुरु शेख मुफीद ने अपनी किताब इरशाद में लिखा है कि इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम अपने समय के सबसे बड़े ज्ञाता थे। इसी प्रकार पूरा कुरान उन्हें याद था और वो बहुत ही सुंदर व मनमोहक ध्वनि में पवित्र कुरान की तिलावत किया करते थे। जब भी वो पवित्र कुरान की तिलावत करते दुखी हो जाते थे और सुनने वाले भी रोते थे।
इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम केवल पवित्र कुरान और उसमें बयान की गई शिक्षाओं पर ध्यान नहीं देते थे बल्कि वो लोगों के लिए पवित्र कुरान की आयतों को बयान और उसकी व्याख्या करते थे। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम विभिन्न तरीकों से इस्लामी समाज के ज्ञान की सतह में वृद्धि करने का प्रयास करते थे। इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम पवित्र कुरान की आयतों को बयान करके उन आयतों को भी बयान और उनकी व्याख्या करते थे जो पैगंबर इस्लाम के पवित्र परिजनों के बारे में नाजिल हुई हैं। जिस तरह से इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम पवित्र कुरान से प्रेम करते थे, उसकी तिलावत करते थे और उस पर अमल करते थे और एक क्षण के लिए भी उससे अलग नहीं होते थे, उसी तरह अपने अनुयायियों का आह्वान करते थे कि वे भी पवित्र कुरान के प्रति अपना ज्ञान को अधिक से अधिक करें, उसकी तिलावत करें और उस पर अमल करें।
इस आधार पर हम देखते हैं कि खुद इमाम पवित्र कुरान के ज्ञानों व रहस्यों के बारे में बात करते हैं और अपने से पहले के इमामों के कथनों को बयान करते हैं। शेख तबरसी ने इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम के हवाले से एक रिवायत में लिखा है जिसमें इमाम फरमाते हैं, कुरान में हर दर्द की दवा है। हुसैन बिन अहमद मनकरी कहते हैं कि मैंने इमाम मूसा बिन जाफर अलैहिस्सलाम से सुना है, वो फरमाते थे, जो कुरान की एक आयत को काफी समझे और उसकी सुरक्षा को पर्याप्त समझे तो वही एक आयत उसके लिए काफी है अगर ईमान और आस्था के साथ हो।
इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम ने पवित्र कुरान को आधार बनाकर अपने एक अनुयायी हिशम बिन हकम को मूल्यवान शिक्षाएं दी हैं जिसके एक भाग को तौहफुल उकूल नामक किताब में बयान किया गया है। इमाम ने हिशम बिन हकम से जो सिफारिशें की हैं उनमें उन्होंने पवित्र कुरान की आयतों से लाभ उठाकर महान ईश्वर की पहचान और बुद्धि के स्थान को बयान किया है और हिशाम को 80 बार संबोधित करके फरमाया है कि ईश्वर ने अपनी किताब में बुद्धिमान लोगों को शुभ सूचना दी है कि मेरे उन बंदों को शुभ सूचना दे दो जो बात को सुनते हैं और उनमें जो सबसे अच्छी होती है उसका अनुसरण करते हैं। ये वे लोग हैं जिनका ईश्वर ने मार्गदर्शन कर दिया है और यही बुद्धिमान लोग हैं।
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جیون کال تھا۔ ایک دن وہ اس گلی سے گزر رہے تھے جو گانے کی آواز سے گونج رہی تھی۔ جو بھی اس گلی سے گزرتا تھا اس کا دھیان گلی میں ہو رہے گانے کی اور جاتا تھا۔ امام مہان ایشور کی اور سے لوگوں کا مارگ درشن کرتا ہے، وہ سچائی اور پتھ پردرشن کا چراغ ہوتا ہے۔ گلی جب گانے کی دھن سے گونج رہی تھی تو سنیوگ سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا گزر بھی اسی گلی سے ہوا۔ امام تھوڑی دیر رکے، اسی دوران کسی کام سے اس گھر کی داسی نکلی جس گھر سے گانے کی آواز آ رہی تھی، وہ بھی گلی میں چلنے لگی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے داسی سے پوچھا، اس گھر کا مالک غلام ہے یا آزاد؟ تو داسی نے جواب دیا، کس پرکار وہ غلام ہو سکتا ہے جو دھن سمپن ہے اور اس کا جیون نعمتوں سے مالا مال ہے؟ میرا سوامی آزاد ہے، وہ دھن سمپتی سے سمرد ہے اور اس کے پاس بہت ادھک داس اور داسیاں ہیں اور اس کے دسترخوان پر وبھن پرکار کے کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ امام نے تھوڑا سوچنے کے بعد کہا، میں بنا کہے سمجھ گیا تھا کہ وہ آزاد ہے، کیونکہ جس کی گردن میں بندگی کا توق ہوگا وہ اس پرکار کا ارتھہین کاری نہیں کرے گا۔ میں بنا کہے سمجھ گیا تھا کہ اس گھر کا مالک بندہ نہیں ہے، آزاد ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے یہ باتیں کہیں اور اپنا راستہ جاری رکھا۔ اس کے بعد داسی گھر میں آئی۔ گھر کے مالک نے داسی کے دیر سے آنے کا کارن پوچھا تو داسی نے وہ ساری باتیں بتا دی جو امام نے اس سے کہی تھیں۔ مالک مکان بش بن حارث حافی امام کی باتوں کا مطلب سمجھ گئے تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ امام کے بندہ کہنے کا مطلب وہ بندہ ہے جو ایشوری راستے پر چلے۔ اس پرکار کا ویکتی اپنے دل کو ایشور کے علاوہ کسی اور سے نہیں لگائے گا اور وہ آزاد ہے جو ایشوری بندھنوں سے مکت ہو۔
دوستو، بشر بن حارث حافی امام کی باتوں کو سننے کے بعد کچھ کھنوں کے لیے سوچ میں ڈوب گئے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ان پر جو کرپا درشٹی کی اس نے انہیں نشچیتنا کی نیند سے جگا دیا۔ ان کے سامنے سے پردے ہٹ گئے۔ انہوں نے مون دھارن کر کے بیٹھ جانے کو صحیح نہیں سمجھا۔ وہ اس پرکار بدل چکے تھے کہ اسی کھن وہ ننگے پیر گھر سے باہر آئے اور امام کے پیچھے دوڑ پڑے۔ اچانک انہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دیکھا اور ان سے معافی مانگی اور وہیں پر توبہ کی، ارتھات پرائشچت کیا اور سجل نیتروں کے ساتھ گھر لوٹ آئے۔ اس کے بعد کبھی بھی انہوں نے پاپ نہیں کیا اور اپنے سمے کے پرسدھ سداچاری بن گئے۔ اس گھٹنا کے بعد وہ بشر حافی ارتھات ننگے پیر والے بشر کے نام سے مشہور ہو گئے۔
بشر بن حارث ایک نمونہ ہے جن پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے دیا درشٹی کی۔ ان کے جیون کا راستہ گمراہی اور پتھ بھرشٹتا سے بدل کر سچائی کی اور ہو گیا۔ یہ بات اسپشٹ ہے کہ صحیح و سچے راستے پر باقی رہنے کے لیے مضبوط آدھار ہونا چاہیے جس کی وجہ سے انسان اس راستے پر باقی رہے۔ پوتر قرآن کی آیتوں کے انوسار ستیہ پریمی انسان کا سب سے مضبوط آدھار مہان ایشور ہے۔ مہان ایشور پوتر قرآن میں کہتا ہے، دھیرے اور نماز سے مدد لو۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مہان ایشور کی ان سفارشوں پر عمل کرتے ہوئے پتھ بھرشٹتا سے مقابلے میں دھیرے اور نماز سے سہایتا لیتے تھے اور اتیاچاری شاسکوں سے لیش مات بھی نہیں ڈرتے تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام صبح شام مہان ایشور سے پرائشچت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، پرارتھنا کرتے تھے اور دیر تک سجدہ کرتے تھے اور ہمیشہ ان کا دھیان مہان ایشور کی اور رہتا تھا۔
ایک دن اتیاچاری شاسک ہارون رشید امام سے پوچھتا ہے کہ ہے پیغمبر اسلام کے بیٹے، ہم اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، پریاس کرتے ہیں اور پرچار کرتے ہیں، پھر بھی لوگ آپ سے پریم کرتے ہیں، کیا پیغمبر اسلام کے بیٹے ہیں؟ ہم کتنا بھی ادھک پرچار کرتے ہیں پھر بھی نتیجہ الٹا ہوتا ہے اور لوگ ہم بنی عباس کو دوست نہیں رکھتے ہیں۔ اس پر امام نے فرمایا، جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟
تجھ میں اور مجھ میں انتر یہ ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں، کنتو تو اور تجھ جیسے لوگوں نے اتیاچار سے سرکار ہتیا لیا ہے اور تیرا شاسن لوگوں کے جسموں و شریروں پر ہے، جبکہ ہم پیغمبر اسلام کی سنتان ہیں اور لوگوں کے دلوں پر شاسن کرتے ہیں۔ ایشور نے لوگوں کے دلوں کو ہماری اور پلٹا دیا ہے، مجھ میں اور تجھ میں یہی انتر ہے۔
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بہت ادھک مہان ایشور کی اپاسنا کرتے تھے، اس لیے ان کی ایک پرسدھی اپادھی عبد الصالح ہے۔ اسی پرکار امام اپریہ چیزوں و باتوں پر بہت دھیر کرتے تھے اور اپنے کروت کو پی جاتے تھے، اس لیے ان کی ایک پرسدھ اپادھی کاظم ارتھات کروت کو پی جانے والا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام راتوں کو انجان ویکت کے روپ میں پوتر نگر مدینہ کی گلیوں میں دین دکھیوں کی سہایتا کرتے تھے۔ یہ بات مشہور تھی کہ جسے موسیٰ بن جعفر کی سہایتا مل جائے وہ آوشکتا مکت ہو جاتا ہے، پرنتو امام خود جس کمرے میں رہتے اور نماز پڑھتے تھے اس میں ایک قرآن اور تلوار کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا۔
دوستو، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جنم دیوس کی پاون بیلا پر آپ سب کی سیوا میں ایک بار پھر ہاردک بدھائی پرستت کرتے ہیں اور آج کے کارکرم کا سماپن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایک سورن کتھن سے کر رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، وہ ویکتی ہم سے نہیں ہے جو پرتی دن اپنا حساب کتاب نہیں کرتا، اگر اچھا کام کیے ہے تو ایشور سے اس کے ادھک ہونے کی دعا کرے اور اگر برا کام کیا ہے تو ایشور سے توبہ کرے۔
دوستوں، آپ سن رہے ہیں ریڈیو تہران کی ہندی سیوا، ابھی آپ سن رہے تھے کارکرم جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے شبھ جنم دیوس کے اوسر پر تھا، جسے لے کر اپستھت تھے ہمارے ساتھی محمد مہدی اور مریم مہدادی۔ اب آپ کی سیوا میں پرستت ہے کارکرم قرآن ایشوری چمتکار۔
قرآن ایشوری چمتکار۔
پریہ شروتاؤ، کارکرم قرآن ایشوری چمتکار کی ایک انیک کڑی لے کر آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں، آشا ہے پسند کریں گے۔ آئیے پہلے سورہ مومنون کی آٹھویں اور نویں آیتوں کی تلاوت سنیں۔
والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون۔
اور جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنی پرتگیا کا پالن کرتے ہیں اور جو سدیو اپنی نمازوں کی رکشا کرتے ہیں۔
اس سے پہلے ہم نے ایمان والوں کی کچھ وشیشتاؤں کا اُلیکھ کیا تھا۔ یہ آیتیں ان کی کچھ انیہ وشیشتاؤں کی اور سنکیت کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ایمان والے امانت دار ہوتے ہیں، وہ ایشور کی امانتوں اور لوگوں کی امانتوں کی رکشا کرتے ہیں۔ الیکھنیے ہے کہ ایشور کی کتاب، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یا ان کا چرتر اور ان کے پوتر پریجن بھاری امانتیں ہیں۔ ان امانتوں کی رکشا کیول دھارمک کرتویوں کے پالن دوارا ہی سمبھو ہے۔
اسلامی شکشاؤں کے انوسار لوگوں کی امانت کی رکشا کے معاملے میں ایمان والے اور کافر میں کوئی انتر نہیں ہے، اور امانت اس کے مالک تک پہنچانی ہی چاہیے، چاہے وہ سدکرمی ہو یا بھرشٹ، اور امانت مولیوان ہو یا مولیہین۔ امانت کی رکشا اور سچائی اتنی مہتوپورن ہے کہ پیغمبر و ان کے پریجنوں نے کہا ہے کہ لوگوں کے اچھے یا برے ہونے کی کسوٹی ان کی نماز، روزہ یا حج نہیں، بلکہ ان کی سچائی اور امانت داری ہے۔
پاروارک وچنوں و پرتگیاؤں اور ساماجک سمجھوتوں کا پالن ایمان والوں کی انیہ وشیشتاؤں میں سے ہے۔ वचन व प्रतिज्ञा का पालन भी अमानतदारी की भांति ईमान वालों से विशेष नहीं है और काफिरों के साथ किए गए समझौतों को एक पक्षीय ढंग से नहीं तोड़ा जा सकता।
ईमान वालों की कुछ विशेषताओं का वर्णन करने के बाद कुरान मजीद आयत के अंत में एक बार फिर नमाज की ओर संकेत करता है कि जो सबसे प्रमुख उपासना है। कुरान ईमान वालों से कहता है कि नमाज, उसके समय और उसके आदेशों पर ध्यान दें। रोचक बात यह है कि ईमान वालों की विशेषताएं नमाज में विनम्रता से आरंभ होती हैं और नमाज की रक्षा पर समाप्त होती हैं। इससे मनुष्य की प्रगति व प्रशिक्षण में नमाज की मूल भूमिका का पता चलता है।
इन आयतों से हमने सीखा कि धार्मिक कानूनों और सामाजिक समझौतों के प्रति कटिबद्धता ईमान की निशानियों में से है।
धार्मिक आदेशों की रक्षा और उनका सही ढंग से पालन ईमान की सुदृढ़ता और ईश्वर से मनुष्य के सामीप्य का कारण बनता है।
आइए अब सूरह मोमिनून की 10वीं और 11वीं आयतों की तिलावत सुने।
الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون
यही लोग तो वारिस हैं जो स्वर्ग की विरासत पाएंगे और वे उसमें सदैव रहेंगे।
ये आयतें कहती हैं कि सच्चे ईमान वालों का अंतिम ठिकाना ईश्वर का अमर स्वर्ग है कि जो केवल ईमान वालों को ही विरासत में मिलेगा। रोचक बात यह है कि इन आयतों में मीरास की बात कही गई है और उसे दोहराया भी गया है। शायद इसका कारण यह हो कि यद्यपि ईश्वरीय पारितोषिक मनुष्यों के कर्मों के आधार पर होता है, किंतु ये पारितोषिक इतना बड़ा व अतुल्य है कि मनुष्य के तुच्छ कर्मों के मुकाबले में उस विरासत की भांति है कि जो बिना किसी कष्ट व प्रयास के मिल गई हो।
इन आयतों से हमने सीखा कि मनुष्य की संपत्ति संसार में दूसरों के लिए विरासत के रूप में छोड़ दी जाती है, जबकि उसके कर्म उस विरासत की भांति हैं जो स्वयं उसे प्रलय में मिलेगी।
स्वर्ग ईमान वालों के लिए ऐसा अमर पारितोषिक है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।
آئیے اب سورہ مومنون کی 12ویں 13ویں اور 14ویں آیتوں کی تلاوت سنیں۔
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين
और निश्चय ही हमने मनुष्य की रचना मिट्टी के सत से की, फिर हमने उसे माँ की कोख में एक सुरक्षित स्थान पर टपकी हुई बूंद बनाकर रखा, फिर हमने उस बूंद को जमे हुए खून का रूप दिया, फिर हमने जमे हुए खून को लोथड़ा बनाया, फिर उस लोथड़े से हड्डियों का ढांचा बनाया, फिर हमने उन हड्डियों पर मांस चढ़ाया, फिर हमने उसे सृष्टि का दूसरा रूप देकर खड़ा किया, तो क्या ही बरकत वाला है ईश्वर जो सबसे उत्तम रचयिता है।
सूरह मोमिनून की आरंभिक आयतों में ईमान वालों की विशेषताओं का उल्लेख करने के पश्चात इन आयतों में कुरान मजीद मनुष्य को माता की कोख में अपने पलने बढ़ने के चरणों को समझने का निमंत्रण देता है और कहता है कि मनुष्य के अस्तित्व का आधार पानी व मिट्टी है और रचयिता ने अपनी पूरी शक्ति से उसमें इतनी योग्यताएं व क्षमताएं रखी हैं कि जिनके माध्यम से वो परिपूर्णता के उच्च चरणों तक पहुंच सकता है।
قرآن مجید کے چمتکاروں میں سے ایک آج سے 14 شتابدیوں پورو ماتا کی کوکھ میں بھرون کے پلنے بڑھنے کے چرنوں کا ورنن ہے، اور جو کچھ اس نے کہا ہے اس میں اور نوین یگ کی ویگیانک کھوجوں میں کوئی انتر نہیں ہے۔ یہ ایسی استھتی میں ہے کہ جس سمے ایشور کی اور سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قرآن مجید بھیجا گیا، تب تک بھرون کے وکاس کے چرنوں کے بارے میں گیان پراپت کرنے کا کوئی سادھن نہیں تھا۔ یہ کاریہ حالیہ شتابدیوں میں وکست مشینوں کے مادھیم سے ہی سمبھو ہو پایا ہے، اور اب منشیہ ان مشینوں دوارا بھرون کے وکاس کے چرنوں کے چتر دیکھ سکتا ہے۔
14ویں آیت اس چرن کی اور سنکیت کرتی ہے جسے منشیہ دیکھ نہیں سکتا۔ یہ چرن ہے مانویہ شریر میں پران پھونکے جانے کا، جسے قرآن مجید نے سرشتی کا دوسرا روپ کہا ہے۔ اسی کے کارن منشیہ کو انیہ رچناؤں پر پراتھمکتا پراپت ہوئی ہے، اور اسی لیے ایشور نے اپنے آپ کو سب سے اچھا رچیتا بتایا ہے۔
ان آیتوں سے ہم نے سیکھا کہ منشیہ کی رچنا میں ایشور کی شکتی پر دھیان دینا اس کے سامرتھ اور تتو درشتا کے بارے میں سوچ وچار کا ایک مارگ ہے، اور اس سے ایمان سدرڑ ہوتا ہے۔
اپنے آپ کو پہچاننا ایشور کو پہچاننے کی بھومکا ہے۔
دوستوں، آپ سن رہے ہیں ریڈیو تہران کی ہندی سیوا، اور اب سمے ہو چکا ہے آج کے مکھیہ سماچاروں کے سارانش کا۔ راشٹرپتی سید ابراہیم رئیسی کا کہنا ہے کہ اگر مسلم راشٹر ایک جٹ ہو جائیں تو مسلمانوں پر کوئی اتیاچار نہیں کر سکے گا۔ سیریا نے جھوٹی خبریں پھیلانے کے آروپ میں بی بی سی کو دیش سے باہر نکال دیا ہے۔ فلسطینیوں اور اسرائیل کے بیچ جھڑپوں میں تیزی آ گئی ہے، اور منی پور کے پورو راجیہپال نے منی پور کی استھتی کو پنجاب اور جموں کشمیر سے بھی بدتر قرار دیا ہے۔ دوستوں، ہمیں آشا ہے کہ ہمارا یہ پرسارن بھی آپ کو سدا کی بھانتی پسند آیا ہوگا۔ کاریکرموں کے بارے میں اپنے وچاروں ایوم پرتکریاؤں سے ہمیں اوش اوگت کرائیے گا۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے hindi@ws.irib.ir، اور ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے parstoday.ir/hi۔ تو دوستوں، اسی کے ساتھ اختر عباس اور ساتھیوں کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔Thank you.